दोस्तों, नई स्टोरी के 3 चैप्टर पब्लिश हो गए हैं। आपको स्टोरी मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगी। अब आगे, अगर किस ज्यादा वाइल्ड हो गई थी तो आप एक बार बोल दीजिए, मैं आपको एक बार फिर लाइट किस कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अपने होंठ आस्था के करीब ले जाने लगा था, लेकिन आस्था तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और अरमान से कोई बात नहीं करती और उसे नज़रअंदाज करती है। तब अरमान तुरंत अपनी बीवी के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने दोनों कानों को पकड़कर दंड बैठक करते हुए बोला, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब खासकर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप मेरा टाइम कभी भी किसी को नहीं दोगी और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अब अरमान की प्यार भरी बातें सुनकर आस्था के दिल में गुदगुदी सी हो रही थी और साथ ही साथ सोच भी रही थी कि प्यार इंसान को कितना बदल सकता है। ये वही खड़ूस, एरोगेंट, बदतमीज अरमान सिंघानिया है जो किसी को सीधे मुंह देखने तक पसंद नहीं करता था। बात तक करना बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज अरमान सिंघानिया अपनी बीवी की ना सिर्फ खुशामद कर रहा था बल्कि उसे मनाने के लिए दंड बैठक भी कर रहा था। अब जैसे ही आस्था को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, अचानक से वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उठकर अपने पंजों के बल खड़ी होकर अरमान के होठों को चूमते हुए बोली, हमें खुद आपसे दूर रहना पसंद नहीं है मिस्टर सिंघानिया, हम आपसे कितना प्यार करने लगे हैं ये हम भी नहीं जानते। इतना बोलकर आस्था अपनी नाक अरमान की नाक से रगड़ती है। वहीं अरमान ने तुरंत आस्था को कमर पर से पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को किस करने में खो गए थे। वहीं दूसरी ओर राधिका इस वक्त रौनक के साथ मौजूद थी। दोनों के बीच किसी तरह की कोई खास बातें नहीं हो रही थीं, बस रौनक राधिका की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। फिर रौनक राधिका को बहुत ही कम समय में अपने दिल से अपना मान चुकी थी, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। रौनक राधिका से दबी हुई आवाज़ में कहती है, राधिका दीदी, आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं रौनक की बात सुनकर राधिका की आंखें नम हो उठी थीं और वो बड़े ही प्यार से रौनक के सिर को सहलाते हुए शांत स्वर में बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है छोटी, राधिका प्यार से रौनक को छोटी कहकर पुकारा करती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये नियति थी जो टल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम जानती हो आहान काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, उस वक्त उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। भले ही उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशन बनाए थे, लेकिन तुम जानती हो उसने खुद को काफ़ी ज़्यादा पनिश किया, इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा गया था। लेकिन फिर जब उसने तुमसे बातें की, उसके बाद जाकर वो थोड़ा सा ठीक हुआ और अपने होशो हवास लौट आए। अब रौनक बड़े ही ध्यान से आहान की बातों के बारे में सुन रही थी, साथ ही साथ उसे याद आया कि उसने आहान से क्या क्या बोला था और शायद इसी वजह से वो अब नॉर्मली बर्ताव कर रहा था, क्योंकि रौनक ने उसके साथ काफ़ी सारा झगड़ा किया था। आहान का जिक्र आने पर रौनक के एक बार फिर सर में दर्द होने लगा और वो राधिका की ओर देखकर बोलती है, अच्छा राधिका दीदी, हमें इस वक्त बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहती हूँ। रौनक की बात सुनकर राधिका ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और चंचलता से बोली, तुम आराम करो, मैं भी अब अपने कमरे में जा रही हूँ, वैसे मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तब रौनक चौंक गई और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या आप गांव नहीं चल रही हैं, नानी माँ तो सबको गांव लेकर जाना चाहती हैं। तब राधिका ने प्यार से रौनक से कहा, हाँ नानी माँ बहुत अच्छी हैं, वो सबको गांव लेकर जा रही हैं, लेकिन उन सबका हिस्सा मैं नहीं हूँ। जैसे ही राधिका ने रोने वाली शक्ल बनाकर ये बोला, रौनक को भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन फिर राधिका बातें बदलते हुए बोलती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी नई जॉब की वजह से गांव नहीं जा पाऊंगी, हालांकि सब मुझे गांव चलने के लिए कह रहे हैं और फिर मेरा भी कुछ इरादा नहीं है। तब रौनक ने राधिका के इमोशंस को समझा और फिर जल्दी ही राधिका रौनक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी। दूसरी ओर अविनाश कितनी ही देर तक एंजल को प्यार करता रहा और जब उसे लगा कि एंजल अब सही से सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। एंजल जल्दी से उठती है और अपने चेहरे को अच्छे से अपने हाथों से साफ करने लगी थी। एंजल के खूबसूरत नेचुरल रेड होंठ अविनाश के किस करने के बाद और भी ज़्यादा लाल हो गए थे और इतना ही नहीं, अविनाश के पहले किस की लाली उसके गालों पर साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश आया तो एंजल को डांटने के लिए था, लेकिन अब वो एंजल को किस कर बैठा था तो वो थोड़ा सा बौखला गया था और बिना एंजल को कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया था। अविनाश के जाने के बाद एंजल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ आस्था ने जो कुछ भी बोला था और डिंपल ने क्या हरकत की थी उसके बारे में सोचकर एंजल का खून खौलने लगा था। उसने डिसीजन लिया था कि वो जाकर अब अच्छी तरह से डिंपल की क्लास लेगी, हालांकि उसे नहीं पता था कि डिंपल इस वक्त ऑलरेडी अरमान सिंघानिया के कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका और उसकी माँ दोनों ही मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि नानी माँ ने उन दोनों को फोन करके बता दिया था कि वो पूरे परिवार को लेकर गांव जा रही हैं, लेकिन तुम लोगों को गांव में कोई एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी नानी माँ का दिल उदास होता था वो अपने बेटे को फोन किया करती थी और गांव आने के लिए बोला करती थी, तो सीमा का मुंह बन जाया करता था, उसे गाँव का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, प्रियंका को भी उन्होंने कभी भी गांव जाने नहीं दिया। लेकिन जब आज नानी माँ ने उन्हें चिढ़ाने के लिए ये बोला कि तुम लोग मुझ बूढ़ी के पास गांव में आने से मना किया करते थे, लेकिन आज देखो मेरे पास कितना बड़ा परिवार है जो मेरे साथ गाँव चल रहा है। नानी माँ ने जैसे ही उन लोगों को ये बताया, अब तो प्रियंका की शक्ल पर 12 बज गए थे। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से उसकी जिंदगी एकदम वीरान हो जाएगी। इसीलिए प्रियंका ने अब डिसीजन लिया कि वो भी अब गांव जाएगी, लेकिन उसे गांव जाकर इस तरह का बर्ताव करना होगा मानो कि उसे पता ही नहीं है कि वो लोग गाँव जा रहे हैं। वहीं प्रियंका जब फोन पर ये सारी बातें सीमा और उसकी बेटी प्रियंका को चिढ़ाने के लिए कह रही थी, ठीक उसी वक्त ध्रुव और आहान नानी माँ के कमरे में आ गए और एक्साइटमेंट में बोले, नानी माँ हम सबसे पहले सुबह के वक्त शॉपिंग मॉल जाएंगे, तो ये हमारे बैग रेडी हैं, तब तक आप हमारी बैग अपने कमरे में रख लीजिए। ऐसा बोलकर ध्रुव वाहन वहां से चले गए थे। क्योंकि स्पीकर ऑन था इसलिए ये वाली बात प्रियंका ने भी सुन ली थी और इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अब अपना आगे का प्लान कंटिन्यू करेगी और बड़बड़ाने लगी, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग गाँव कैसे जाते हैं, मैं इन लोगों की खुशियां पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। कहीं ना कहीं जिस दिन प्रियंका की बेइज्जती हुई थी वो वाली बात वो आज तक भूल नहीं पाई थी, तो इसीलिए वो अब अपना बदला सीधे सीधे उन सबसे लेना चाहती थी। जल्दी उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया था और सही समय पर शॉपिंग मॉल पहुंचने के लिए कह दिया था। उसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब शॉपिंग मॉल में उन सबके आने का इंतजार था और उसका बॉयफ्रेंड राघव ने डिसीजन ले लिया था कि वो कल आस्था का किडनैप कर लेगा। अगर आस्था किडनैप हो जाती है उसके बाद कोई कहीं नहीं जा पाएंगे और नानी माँ जो खुशी से उन्हें उस ट्रिप की जानकारी दे रही थी उनकी खुशी धरी की धरी रह जाएगी। कहीं ना कहीं प्रियंका ये सब सोचते हुए गहरी नींद सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी ही इस रात के बाद एक हसीन खूबसूरत सुबह हो गई थी।
सुबह होते ही पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन में एक अलग तरह की चहल पहल थी। अरमान की आंखें बहुत सुबह ही खुल गई थी लेकिन आस्था अभी तक सो रही थी, क्योंकि अरमान की बाहों में उसे एक सुकून की नींद आया करती थी। आस्था कितनी ही देर तक अरमान के साथ गहरी नींद में सोती रही। अरमान आस्था को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अगर आस्था को इतने सुकून से उसकी बाहों में सोते हुए देखना अरमान को एक अलग लेवल का सुकून दिया करता था। कितनी देर तक आस्था के खूबसूरत से चेहरे को निहारता रहा। वहीं आस्था बिल्कुल घोड़े बेचकर सोई हुई थी। हालांकि नानी माँ ने सबको सुबह जल्दी उठने के लिए कह दिया था कि उन सबको शॉपिंग करने के लिए जाना था और फिर आज शाम को ही गांव के लिए निकलना था, तो इसीलिए आस्था को जगाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा राजेश को कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई भी लेट हो गया तो उनका जो बना बनाया बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार किया था। अब जल्दी ही राजेश अरमान सिंघानिया के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खटखटाए कैसे, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने बहुत पहले ही उसे बड़े ही कम शब्दों में समझा दिया था कि जब भी वो अपनी बीवी अरमान के साथ हो तो कोई भी उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। अब राजेश कश्मकश का शिकार हो गया था। ऊपर से नानी माँ ने आस्था को लेने के लिए भेजा था लेकिन अरमान सिंघानिया के कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी जैसे ही कांपते हुए हाथों से राजेश ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया। अरमान ने अपने सीसीटीवी कैमरे ऑन किए थे। इस वक्त अरमान ने तो सिर्फ चेक करने के लिए सीसीटीवी ऑन किए थे कि इस वक्त कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सभी लोग हॉल में थे, तो अब जल्दी ही जैसे ही अरमान ने राजेश को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया, आस्था की नींद खराब ना हो इसलिए अरमान ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था। अरमान के दरवाज़ा खोलने पर राजेश की टांगें कांपने लगी थीं। वो हकलाते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, वो नानी माँ ने ही मुझे आस्था मैडम को जगाने के लिए भेजा था। तब अरमान ने राजेश को सपाट लुक दिया था और अगले ही पल बिना किसी के इमोशन के उसकी ओर देखकर सख्त आवाज़ में बोला, जाओ यहाँ से। अरमान का इतना कहना था और राजेश बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल पड़ा। उसके जाने के बाद अरमान ने देखा कि आस्था अभी बड़ी ही प्यारी नींद सोई हुई थी। अरमान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गया था। नीचे आकर उसने देखा कि बाकी सभी लोग तैयार हो गए हैं। ध्रुव वाहन नानी माँ को भी अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाना चाहते थे लेकिन नानी माँ मना कर रही थी, क्योंकि कल रात डिसाइड हो गया था कि दादाजी और नानी माँ घर पर ही रहेंगे और बच्चों के आने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ध्रुव वाहन ज़िद पर अड़ गए थे और दादाजी से भी बोले कि आप दोनों ही यहाँ क्या करेंगे, प्लीज़ 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 एक फैमिली शॉपिंग हो जाएगी, आप सभी साथ चलिए ना। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहान दोनों ही अब दादाजी और नानी माँ दोनों से ही चलने की रिक्वेस्ट करने लगे थे। अब बच्चों की जिद के आगे उन दोनों ने घुटने टेक लिए थे और दोनों ने ही अब चलने का डिसीजन ले लिया था। वहीं अरमान ने एक नज़र सबकी ओर देखा और बिना एक्सप्रेशन के बोला कि आप सब चलिए, अभी आस्था सो रही है, जब वो उठ जाएगी मैं उसे लेकर आ जाऊँगा। अरमान की बात सुनकर सबने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। किसी ने ये नहीं बोला था कि आप लोग साथ चलिए और सभी अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे।